आस्तिक के भाई बहन अरुणिमा के पास आए हुए थे और वो अरुणिमा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अरुणिमा एक बार आस्तिक से मिलने के लिए राजी हो जाए, लेकिन अरुणिमा ने साफ तौर पर इसके लिए मना कर दिया था। पृथ्वी ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरुणिमा प्लीज़ कम से कम एक बार भाई से मिल लो, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, बार बार बच्चों को याद कर रहे हैं। लेकिन अरुणिमा ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं उस इंसान का चेहरा तक देखना नहीं चाहती हूँ। पृथ्वी प्लीज़ मुझे उस इंसान से मिलने के लिए मजबूर मत करो। लेकिन प्रणाली ने अरुणिमा के हाथों को पकड़ लिया और उसके पैरों के पास बैठते हुए कहने लगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरा भाई मर रहा है, वो बस एक बार तुम्हें देखना चाहता है। मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा प्लीज़ तुम मेरे भाई को मत दो। सब लोग हैरानी से प्रणाली को देखने लगे। प्रणाली ने गिड़गिड़ाते हुए अरुणिमा को देखकर कहा कि अरुणिमा, मेरे भाई को बचा लो, केवल तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो, वो बस तुम्हारे लिए ही जी रहा है, मेरे किए की सज़ा मेरे भाई को मत दो। मैं मानती हूँ कि उस दिन तुम्हारे खीर में नमक मैंने मिलाया था, जिसकी वजह से भाई ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा था और तुम्हें सज़ा भी दी थी। तुम्हारी अपराधी मैं हूँ, चाहे तो मुझे सज़ा दे सकती हो, लेकिन मेरे भाई को बचा लो। अरुणिमा ने अपने हाथ खींचे और कहा, माफ़ कीजिए राजकुमारी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? कि तुम मुझसे माफ़ी मांगती हो और तुम्हें अफसोस है कि तुमने जो मेरे साथ किया है? तुम्हें लगता है क्या इतना काफ़ी है? तुम्हारे लिए, तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से तुम्हारे भाई ने उस दिन मुझे जानवर की तरह मारा था, कमरे में ले जाकर मेरा रेप किया था। तुम्हें लगता है कि एक माफ़ी से तुम अपने भाई के गुनाहों को कम कर सकती हो? कुछ भी नहीं भूली हूँ राजकुमारी प्रणाली, मुझे सब कुछ याद है, अपने ऊपर हुए वो अत्याचार, हर जुल्म मुझे याद है, मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगी। पृथ्वी अभी भी कुछ कहना चाहता था कि तभी शारदा जी ने गुस्से में उन लोगों को देखते हुए कहा, अगर तुम लोग अभी भी ऐसे यहाँ पर खड़े होकर उस आदमी की तरफदारी करना चाहते हो और ये चाहते हो कि मेरी बेटी उसे जाकर मिले, तो अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मेरी बेटी ऐसे इंसान से नहीं मिलेगी जिसने उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दी थी। शारदा जी की बात सुनकर पृथ्वी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और उसके हाथों की मुठ्ठियाँ भी कसी हुई थीं। उसे ये नहीं पता चल रहा था कि सारी सच्चाई जानने के बाद भी अरुणिमा शारदा जी से कुछ कह क्यों नहीं रही है, और ना ही उसने शारदा जी के खिलाफ एक शब्द अपने मुंह से निकाला था, बल्कि वो तो चुपचाप शारदा जी को अपने साथ रखे हुई थी। यही बात समझने की तो सक्षम भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से अरुणिमा की हालत थी उसने इस बात को फिलहाल उठाना सही नहीं समझा था। उसने पृथ्वी और बाकी सबको भी इस बारे में बात कोई ना करे ये समझा दिया था। एक एक करके सब लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। हालांकि सबका दिल रो रहा था, वो सब यहाँ पर अरुणिमा को मनाने आए थे, लेकिन अरुणिमा अपने फैसले पर डटी हुई थी, वो आस्तिक से नहीं मिलना नहीं चाहती थी। बस अब सक्षम ही वहाँ पर खड़ा था। सक्षम ने एक नज़र अरुणिमा को देखकर कहा, अरुणिमा मुझे पता है कि तुम फैसला ले चुकी हो और मैं तुम्हारा फैसला बदलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इंसानियत के नाते तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम बस एक बार राजा साहब से मिल लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरी बात पर गौर करना। ये कहते हुए सक्षम भी उस कमरे से चला जाता है। अरुणिमा अपना पेट पकड़कर बैठी हुई थी और उसने गुस्से में कहा, उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल। आस्तिक अपने कमरे में था, उसके पैरों को बांध दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही उग्र हो गया था। हॉस्पिटल का स्टाफ इस समय आस्तिक के सामने बैठा हुआ था। आस्तिक ने अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे, एक गंदी सी पैंट और गंदा सा कुर्ता। आस्तिक के बाल बिखरे हुए थे और उनमें धूल मिट्टी भी लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी भी आ गई थी और वो बिल्कुल जंगली लग रहा था। अस्पताल का एक कर्मचारी खाने की थाली आगे करते हुए कहता है, अभी भी कह रहा हूँ, खाना खा लो, ये आखिरी बार है। आस्तिक ने एक हताश लड़के की तरह, जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है और किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, ऐसे किसी छोटे बच्चों की तरह ज़िद करते हुए कहा, अरुणिमा, अरुणिमा ने आने के लिए कहा है, वो आएगी, वो मुझे खाना खिलाएगी, अरुणिमा से कहो वो यहाँ आए, मैं तभी खाना खाऊंगा। आस्तिक की बात सुनकर हॉस्पिटल के स्टाफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने आस्तिक के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे आस्तिक जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, मुझे मार क्यों रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे रो रहे हैं। कहते हुए आस्तिक ने अपने बगल में पड़ा हुआ एक प्लास्टिक का गुड्डा उठा लिया और उसे सहलाने लगा। आस्तिक जिस तरीके से बच्चों के लिए जिद कर रहा था, उसे ऐसा करता देख कीर्ति ने उसके लिए ये खिलौने लाया था ताकि उसके बच्चों की मंशा पूरी हो सके, लेकिन इस खिलौने के आने के बाद आस्तिक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। वो उसे खिलौने वाले टॉय को ही अपना बच्चा मानता था और उसे बच्चों की तरह ही रखता था। आस्तिक ने उस खिलौने को अपने सीने से लगाया और वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, रो मत बेबी, रोना नहीं, ये अंकल बुरे हैं, ये बैड अंकल हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर फिक्र मत करना, डैडी यहीं पर है, डैडी हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे,
कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और इस जैसे बैड अंकल को कभी तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। अस्पताल के स्टाफ हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी निराश हो जाते हैं। खाने की थाली वहीं पर छोड़कर वो दोनों दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वो आस्तिक के कमरे का ताला लगाते हुए कहते हैं, यार यकीन नहीं होता है कि ये वही आदमी है जो कभी इस पूरी रियासत पर राज किया करता था। आज देखो, किसी जानवर की तरह एक कमरे में बंधा हुआ है। कुछ घंटे बाद आस्तिक अपनी नींद से जगाता है। वो अपने साथ उस खिलौने को प्यार से सुला रहा था। उसने उस खिलौने को प्यार से बेड पर रखा और उसे थपकी देकर सुलाते हुए कहने लगा, बेबी मैं यहीं पर हूँ, डैडी यहीं पर है, वो कहीं नहीं गए हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज बेबी, डैडी से कभी नफरत मत करना और अपनी मम्मा को कभी परेशान मत करना। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी डैडी की जितनी बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। तुम इधर उधर मत घूमना, तुम्हें चोट लग जाएगी तो तुम्हारी मम्मा रोएगी। अपनी मम्मा को रोने मत देना, वो बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हारी मम्मा को हमेशा ही रुलाया है। मुझसे वादा करो बेबी, तुम अपनी माँ को हमेशा खुश रखोगे।